Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vakti Shakti Samita Vasal Mimata Vasni Viveno Atsarvan. तो कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक की जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसके मंगलाचरण को लेकर के प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये बतलाया गया कि जब यह जिज्ञासु रुचि से युक्त होता है और उसकी रुचि में स्पष्टता होती है, उस समय आचार्य आदि की प्रसन्नता को प्राप्त करता हुआ तब जो है वह शास्त्र के रहस्य को समझने लायक होता है। और यही ऋषि भी प्रार्थना कर रहे, कहा कि आचार्य के प्रसाद को लेकर के ही हम यहां पर इस तैत्तिरीय उपनिषद का जो सार है उस सार की व्याख्या करने जा रहे हैं। और व्याख्या भी किसके लिए करने जा रहे, तो संकेत कर दिया विस्पष्ट रुचिनाम, जिनकी रुचि विस्पष्ट। और रुचि क्यों कह दिया, क्योंकि बात यह है जगत के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, ऋषि हो, चाहे सामान्य प्राणी हो, उनके पास में जो भी ग्राह्य और ग्राहक भाव है, जो भी ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान का आश्रय क्या है, मूल कारण क्या है। सामान्यतया तो हम देखते हैं कि जो भी हमें ज्ञान हो रहा है या जो भी हमें विज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान विज्ञान का साधन क्या है, तो हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियां ही साधन और हमारा अंतःकरण ही साधन। लेकिन अंतःकरण और इंद्रियां यह जो ज्ञान करती हैं, इनके ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो ये भी हम जानते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं और अंतःकरण से होने वाले ज्ञान को हम अनुमानिक ज्ञान कहते हैं। तो इस संसार के अंतर्गत हमें जो भौतिक दृष्टि से जितना भी ज्ञान हो रहा है, वो या तो इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसे हम प्रत्यक्ष नाम देते, या जो है अंतःकरण से होने वाला अनुमानिक ज्ञान। तो अनुमान रूप ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप ज्ञान। अब ये अनुमान रूप ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप ज्ञान, यहां से आगे हमारी स्थिति नहीं है। हमारी का मतलब भौतिक जगत में भौतिक दृष्टया होने वाले ज्ञान की, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान, यहां तक ज्ञान की स्थिति। तो हम इसी को सब कुछ मान लें कि यही ज्ञान है, तो क्या होगा। कहने लगे इनके अनुमानिक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान और इनके साधनों का अभाव होने पर भी ज्ञान होता। ध्यान देना, अनुमानिक और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उन अनुमानिक और प्रत्यक्ष ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है। कहा वो ज्ञान क्या है और वो किस साधन से होता, तो वहां पर अंतःकरण की गति नहीं है, वहां पर इंद्रियों की गति नहीं, और वो ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, वो ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और उस ज्ञान को ही उस ज्ञान को इस सार शब्द से कहा, तत्व शब्द से कहा। उदाहरण के लिए इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, एक तो होता है ज्ञान जिसे हम बोलते हैं आभास भाष्य। क्या कहते हैं? आभास भाष्य। तो एक तो आभास भाष्य ज्ञान और दूसरा ज्ञान क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोल देते हैं साक्षी भाष्य। तो एक तो आभास भाष्य ज्ञान और एक साक्षी भाष्य ज्ञान, शास्त्रीय भाषा में दो रूप के। अब आभास भाष्य ज्ञान क्या है? तो जितना भी आनुमानिक ज्ञान है और जितना भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये सब ज्ञान कैसा है? आभास भाष्य ज्ञान है। अब जिसे साक्षी भाष्य ज्ञान कहते हैं, उसका यहां क्योंकि अंतःकरण इंद्रियों से ही हम मानते हैं और इनसे माना हुआ ज्ञान तो आभास भाष्य है, तो साक्षी भाष्य ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता नहीं। यद्यपि वो अप्राप्त नहीं है, ये भी ध्यान रखना, प्राप्त होते हुए भी वो हमारे लिए अप्राप्त है। उदाहरण के लिए ये बल्ब जल रहे, इन बल्ब के प्रकाश से क्या प्रकाशित हो रहा? ये कुर्सियां, हम लोग और ये हाल सब किससे प्रकाशित हो रहा? बल्ब के प्रकाश से। तो बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला ये सब, तो ये जो हम सब जान रहे हैं, हम बैठे, आप बैठे, कुर्सियां रखी, मेज है, महक है, ये सब जो हम जान रहे हैं, ये भी एक ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? तो ऐसे कहेंगे आभास भाष्य ज्ञान। इसे क्या कहेंगे? आभास भाष्य ज्ञान। ऐसे ही हमारे इंद्रियों के द्वारा आंख से देखा जाने वाला जितना ज्ञान है, इंद्रियों से होने वाला, वो सब ज्ञान कैसा है? आभास भाष्य ज्ञान। लेकिन जिसे आभास भाष्य ज्ञान कहते हो, तो ये आभास को भी प्रकाशित करने वाला कोई है? जैसे बल्ब जो है सब प्रकाश कर रहा है, लेकिन बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र है या बल्ब भी किसी के प्रकाश से प्रकाशित है, तो क्या कहोगे? बल्ब का वह प्रकाश स्वतंत्र प्रकाश, बल्ब जो है बल्ब अपने स्वरूप से रहता हुआ प्रकाश करने में समर्थ नहीं। बल्ब कब प्रकाश कर पाता? जब विद्युत से बल्ब को प्रकाशित करती है, तब बल्ब जो है प्रकाश कर पाता। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो आंख आदि बल्ब हैं, ये भी किसी को देखने में कब समर्थ होते? कहा इनको भी प्रकाशित करने वाला कोई है, और इनको जो प्रकाशित करने वाला प्रकाश है, वही है प्रकाश। वो प्रकाश क्या है और वो कब माना जाएगा? तो इनका प्रकाश नहीं होता, लेकिन उसका प्रकाश होता है। उसका प्रकाश स्थायी या सच्चा कब माना जाएगा? कि इसके प्रकाश के, बल्ब के प्रकाश के न होने पर भी जिसकी सत्ता है, वो ही सच्चा होगा। इसी प्रकार से अंतःकरण और इंद्रियों के प्रकाश के न होने पर भी जो प्रकाश है, वो क्या है? वही सच्चा प्रकाश, और उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते। ये बात समझ। अब इसी को यदि शास्त्र में देखें, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। क्या कहा? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सबके हृदय में कौन है? कहा मैं हूं, मैं बैठा हूं। और बैठ करके क्या करते हो? तो क्या कहा? स्मृतिर ज्ञान और अपोहनन च। स्मृति देने वाला भी मैं हूं, ज्ञान देने वाला भी मैं हूं और ज्ञान को हटाने वाला भी मैं हूं। विचार करो, ज्ञान को हटाने अपोहन करना माने हटाना, ज्ञान को हटाने वाला भी मैं हूं और ज्ञान को देने वाला भी मैं हूं, स्मृति आदि देने वाला भी मैं हूं। अब आप विचार करो तो मूल कौन हो गया? क्या कहोगे? भगवान श्री कृष्ण वहां कह रहे तो यही कहोगे भगवान श्री कृष्ण हो गए, माने भगवान हो गया। तो भगवान हृदय में बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है? कहा स्मृति भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है और अज्ञान भी दे रहा है। और उसके बल से ही हम क्या कर रहे हैं? कहा हम भी ज्ञान कर रहे हैं, हम भी ज्ञानी अपने को मान रहे हैं। तो हमारा जो ज्ञानीपना है वो कैसा है? उधार का। हमने उधार लेकर के और हमने क्या मान लिया कि मैं संपत्ति का मालिक हूं, लेकिन संपत्ति कैसी है? कहा कर्ज ली हुई, उस पर स्वतंत्र संपत्ति नहीं, ऐसा कह दो। तो हम जो ज्ञानी बनते हैं, हम का मतलब क्या है? अंतःकरण की उपाधि वाला हम। वैसे तो मैं जो शुद्ध में है वो तो क्या है? वो स्वतंत्र है, लेकिन अंतःकरण की उपाधि वाला जिसे जीवत रूप से देखा गया वो कैसा है? उसका जितना भी ज्ञान विज्ञान है सब कैसा है? सब उधार खाते का है, उस पर अपनी निजी मालकियत नहीं। अब जब दूसरे का है तो दूसरे का कर्ज होगा तो क्या चैन की नींद आएगी? उसे चैन की नींद नहीं आएगी। चैन की नींद कौन ले सकता? कहा जिसका अपना धन है तो सिर्फ चिंता नहीं। इसी प्रकार से यहां तो सारा का सारा संसार चिंतनीय क्यों है, सोचनीय क्यों है, शोक से ग्रसित क्यों है? तो उसका कारण क्या है? कहने लगे वो उदार खाते के ज्ञान को लेकर के ज्ञानी है, इसलिए शोक से। अब बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, इसलिए मेहमान में कहा भी है, दृज कुटिल नाना पथ जसा, नाना प्रकार के मार्ग हैं, नाना प्रकार के संप्रदाय पंथ आदि हैं, कोई कुछ मानता कोई कुछ मानता, कोई आड़ा है कोई ठाड़ा है कोई टेढ़ा, ऐसे ही मार्ग भी, ये सब मार्ग का संवेद वही है। लेकिन सारे मार्गों का मूल क्या है? जितने भी मार्ग हैं, कोई नदी इधर से बह रही कोई उधर से बह रही, लेकिन सब जाती कहां? सागर। वैसे ही वहां पैसा मरणव इव संकेत कर दिया, वैसे ही सारा का सारा, चाहे कोई अपने को ज्ञानी कहे, चाहे कोई अपने को विज्ञानी कहे, चाहे अपने को कोई ऋषि कहे, चाहे महर्षि कहे, ये सब कहना जो है, ये जो कह रहे हैं, और कोई अपने को है वैष्णव कहे, कोई सन्यासी कहे, कोई अपने को वल्लभ संप्रदाय का माने, कोई किसी को माने है, कोई अपने को इसी प्रकार से नाना रूप में और नाना मार्गों को लेकर के हम अपनी कल्पनाएं करें। कोई लोकाकाश आलोकाकाश के मध्य में स्फटिक शिला पर बैठा जीव मुक्त जीव है, ऐसी मान्यता किसी की, किसी के यहां रूहें जो है वो पैदा नहीं होती हैं और वो जो है जो दोगज आदि में जाती हैं और क्या नाम जो है फिर उनका उदय होता है, इस प्रकार से मानने वाले हों। लेकिन इन सबका यदि ये सारे के सारे मार्ग और इनका यदि अंत देखेंगे तो अंत कहां होता? जैसे सारी नदियों का अंत कहां होता है, वैसे ही एक सत्ता तो माननी ही पड़ती है, कोई भी संप्रदाय क्यों हो, एक सत्ता अंत में स्वीकार करनी पड़ती। और वो जो सत्ता है वो क्या है? कहने लगे अब चाहे उसे नाम चाहे कुछ भी दे दो है, लेकिन वही क्या है? वही मूल सत्ता है, वही है आत्मा, वही है ब्रह्म, वही है तत्व, वही क्या है? वही तत्व। उससे ही ये सारा का सारा विस्तार, उसी से ज्ञान विज्ञान होता। अब कुछ लोग ऐसे हैं कहा ये ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, जो प्रकृति को ही मानते। ऐसे भी तो लोग हैं जो ईश्वर नाम की सत्ता मानते ही नहीं, और कुछ लोग जो है ईश्वर को न मानते, कहते कुदरती ही सब कुछ है। लेकिन वहां भी कुदरत को एक रूप में स्वीकार करते, एकत्व जो है कुदरत को भी स्वीकार करते, कहा उसी से सब हो रहा। तो इस प्रकार से सबका अंत जो है वो होता है एक। अब वो एक जो है वो कैसा है, तो मान्यताएं सबकी भिन्न भिन्न है, वो है ज्ञान स्वरूप। कैसा है तो उसकी सत्ता तो स्वीकार कर ली, लेकिन वो सत्ता कैसी है तो कहा ज्ञान स्वरूप है। और जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है वही है आनंद स्वरूप, और ऐसी जो सत्ता है उस सत्ता से ही सब कुछ हो रहा, ये मान्यता। लेकिन जो ईश्वर आदि को नहीं मानने वाले वो तो कहेंगे प्रकृति से हो रहा, मैं करने वाला हूं। लेकिन विचार करो ये बात, भगवान ने जो कहा कि स्मृति देने वाला भी मैं, ज्ञान देने वाला भी मैं हूं, अज्ञान देने वाला भी मैं हूं, अर्थात ज्ञान अज्ञान विज्ञान स्मृति सब का आश्रय मैं हूं। और ये भी नियम है, जो आश्रय होता है तो वही विषय भी होता है। ज्ञान भी जिसका आश्रय लेगा तो विषय किसे करेगा, उसी आश्रय को। अज्ञान भी जिसका आश्रय लेगा उसी को विषय करेगा। इसी प्रकार से स्मृति आदि, तो ये सब संकेत किस लिए, इसलिए कि हम जो कुछ भी कल्पना करते हैं या जानते हैं या मानते हैं, हमारी मान्यता और हमारी ज्ञानता जानना, ये सब किसको लेकर के, कहां तक है हमारी गति, कहां तक है जीव भावत्व, तो अंतःकरण और इंद्रियों पर्यंत। हमारी मान्यता और हमारी जो है प्रत्यक्षता जानने की स्थिति जो है वो कहां तक है ज्ञान की, अंतःकरण और इंद्रियों तक हो। उससे आगे हमारी गति नहीं, जिसे हम करके बोलते हैं उसकी आगे गति नहीं। लेकिन तो आगे जब गति नहीं है तो फिर इस सुसुप्ति को प्रकाशित किसी ने किया कि नहीं, यह भी सर्वथा अंधकार था हमारी स्थान, तो फिर उसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए। और यदि कहो कि नहीं मेरे को स्मृति हुई, तो तुम तो जो साधनों से जो है ज्ञान करने वाले थे वो साधन वहां थे नहीं, विचार करने की बात है, तब वहां पर क्या कहते। इसलिए उपनिषद वेदांत के अंतर्गत कहा गया वो सुसुप्ति क्या है, वो है साक्षी भास। साक्षी भास का मतलब उस मूल से प्रकाशित होने वाली, और उसी से वो फिर जागृत में उन प्रत्यक्षादियों के अंतर्गत स्मृति संभव हो पाती। यदि विद्युत ही न हो तो बल्ब ये प्रकाश कर सकता है नहीं। बल्ब जो है प्रकाश करता है, कब करता है, आपने स्विच को ऑन कर दिया तो प्रकाशित हो गया, और स्विच को ऑफ कर दो तो बल्ब क्या है, प्रकाश नहीं कर पाता। तो बल्ब की गति कितनी है, स्विच को ऑन ऑफ करने मात्र से प्रकाशित अप्रकाशित हो जाता, ठीक है ना। अब जो ये प्रकाशित अप्रकाशित होना बल्ब का है, लेकिन ये कब हुआ, तो स्विच का ऑन करना और स्विच का ऑफ करने का मतलब क्या, स्विच ऑन कर दिया तो उस जो मूल है उसका प्रवाह जो है इस बल्ब के साथ में हो गया, तादात्म्य हो गया, और जब तादात्म्य हो गया तो बल्ब प्रकाश करने लगा, और स्विच को ऑफ कर दिया तो इसका प्रवाह टूट गया, और प्रवाह टूट गया तो बल्ब प्रकाश नहीं कर पा रहा, यही तो है ना। तो हमारी गति कितनी है, हमारा जो अंतःकरण है इसी को ऑफ ऑन करना क्या, इधर को दबा दिया उधर को दबा दिया, इधर दब गया तो अंधकार हो गया, ऊपर कर दिया तो कहा प्रकाश हो गया, तो देखने लगा जानने लगा, यही तो इसकी स्थिति। तो ये पराधीन हुआ कि नहीं, लेकिन अब जहां से ये प्रकाश आया, जब इसमें प्रकाश आया तो वो कहां से आया, उसे न तो ये मन जान पाता है और न ये इंद्रियां जान पाती। ये तो तभी जानती कि कहीं से आया है जब इसमें आ जाता, इसलिए ये तो दूसरे से प्रकाशित हैं। इसलिए शास्त्र में शब्द दिया आभास भाष्य। आभास भाष्य क्यों कहा, क्योंकि वहां सुषुप्ति में भी जो प्रकाश है वो भी एक अवस्था विशेष है, तो वहां पर भी जो है, इसलिए उसका नाम दे दिया क्या, एक तो कहा चिदाकाश और एक कहा भूताकाश और एक कहा चित्ताकाश। चित्ताकाश में प्रकाश आया, लेकिन कब आया प्रकाश, तो चित्ताकाश में प्रकाश बगैर चिदाकाश के संबंध के आ सकता। अब चिदाकाश में जो प्रकाश हो रहा है तो वहां क्या है, वहां भूताकाश भी है, तो उस भूताकाश में स्थित तो परिच्छिन्नता वहां स्वीकार कर दी, इसलिए वहां पर जो है वो भी कैसा है, आभास ही है, वो भी क्या है, आभास है। तो अब जो चिदाभास जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है, चिदाभास जो है, ध्यान देना, चिदाभास माने चैतन्य का आभास और चिदाभास से अंतःकरणादि का आभास, तो चैतन्य चिदाभास जो है वो भी क्या है, भासित हो रहा है, किससे हो रहा है, वह मूल क्या है, तो वो है चिदाकाश, जिससे चिदाभास हुआ है, जिसे चिदाभास आप कहते हैं, जिसका नाम जीव है, वो चिदाभास क्या है, वो चिदाकाश से ही, चिदाकाश ही है मूल प्रकाश, मूल ज्ञान, और उससे ही चिदाभास और चिदाभास से चित्ताभास आदि हो जाता है, ये सब बन जाते आगे, और तब जाके प्रत्यक्ष अनुमान आदि ज्ञान होते। इसलिए ये सिद्ध होता है कि मूल क्या है, तो भगवान ने जो गीता में कहा तुम मानो या मत मानो, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो मानने न मानने पर भी वो तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो ये स्मृति, ये ज्ञान और इसका ज्ञान आदि जो कुछ भी है, इस सब का स्रोत क्या है, तो वही है क्या, चिदाकाशो, उस चिदाकाश से ही सब कुछ हो रहा। इसी को आचार्य शंकर ने मेघ इत्यादि के नाम से कहा था, तो उसी में माया इत्यादि ले लिए, वही मेघ है, तो मन आदि को भी उसी में ले लिया, लेकिन वो सब कैसे हैं, बादल आते हैं, मन होता है, माने विद्युत आती है, गर्जना होती है, अहंता होती है, ये सब होते हैं, लेकिन सबका सफाया भी, तो परिशेषतया क्या रहता है, का एक चिदाकाश, उसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन उसी में सबकी कल्पना होती है। तो यहां पर ये जो है उसी की तरफ संकेत करते, ऐसे सार को जानना, ऐसे तत्व को जानना, ऐसे सार को बतलाने जा रहे। अब वो सार किससे बतलाया जाएगा, यदि उसे बतला दिया जाएगा तो वो सार सार नहीं रह जाएगा, वो तो पराधीन हो गया। तो ये ही बड़ी विलक्षणता है, ऐसे सार को जानने के लिए, ऐसे सार की व्याख्या करने के लिए और ऐसे सार को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए, का प्रसाद, प्रसन्नता। अब ये प्रसन्नता चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है, जितना भी प्रकाश, जितना भी ज्ञान आदि है, उसका स्रोत क्या है, तो का चिदाकाश, और वो चिदाकाश कैसा है, कभी होने वाला कभी नहीं होने वाला ऐसा नहीं, वो सर्वदा रहने वाला है और उसी में सबकी कल्पना, ऐसा हो। तो ऐसे उसको हम जानना चाहते हैं तो कैसे जान पाएंगे, तो कहा उसकी कृपा के बगैर, उसके प्रसाद के बगैर जान सकते नहीं, इसलिए उसके प्रसाद की जरूरत है, इसलिए उसके अनुग्रह की जरूरत है, और जब उसका अनुग्रह होता है, उसका प्रसाद होता है, तब उसे जान। लेकिन कब जानोगे, कौन जानेंगे, तो जब तक आपकी रुचि उधर नहीं होगी तब तक वह जानना बनना कठिन। जब उसमें रुचि होती है, रुचि होने पर क्या होता है, आगे जो भी स्मृति ज्ञान अपोहन आदि है वो स्वयं करता है। आपके अंदर वह बल, आपके अंदर वह शक्ति वो स्वयं देता है, और जब स्वयं शक्ति देता है तब आप उसे जानने में समर्थ। इसलिए तुलसीदास ने बड़ी बढ़िया बात ली, सोई जान है जय देही